लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हमारी चाह एक मित्रता की होती है, एक ऐसी मित्रता जहां हम कम से कम किसी एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हों, जो हमें समझता हो, जिसे हम अपने मन और दिल की बातों को खुले रूप में व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिरले ही होता है जहां हमें अपने मन माफिक कोई व्यक्ति मिलता हो जो हमें, हमारे जीवन को और हमारी मनोभावनाओं को पूरी तरह समझता हो। यदि किसी को ऐसा भला मानस मिल गया तो मानो उसे जीवन की एक बहुमूल्य निधि ही मिल गई हो। निसंदेह ऐसे व्यक्ति अपने में धन्य हो जाते हैं। श्रोताओ, पास्का के चौथे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए एक वैसे ही भले व्यक्ति की चर्चा करता है जो हमें सृजनहार पिता ईश्वर की ओर से भले गरेड़िए यीशु ख्रिस्त के रूप में दिया गया है। जी हाँ, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए पिता की ओर से दिए गए वे अनमोल निधि हैं, जिन्हें हम अपने जीवन की सारी बातों को बिना हिचक और बेझिझक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं हमें मित्र कहकर संबोधित किया है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं में इस बात की परख करें कि हम पिता से मिले उपहार यीशु ख्रिस्त को किस रूप में देखते हैं, हमारा उनके संग किस तरह का संबंध है, क्या हम उन्हें जानते हैं और अपने को उनके द्वारा जानने देते हैं।
भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो न गडेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िये को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उसे लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह जो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर जीवनदायी वचन हमें भला गरेड़िया के निकट आने और उसके सानिध्य में रहने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम उनके प्रेम से अपने जीवन को पोषित कर सकें और अपने को उस भेड़ शाला में सम्मिलित करने को तैयार कर सकें जिसके लिए पिता ईश्वर ने हमें जीवन का यह दान दिया है। श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए यीशु के उत्साही शिष्य पेत्रुस के कार्यों की चर्चा करता है, जो अपने स्वामी के कदमों में चलते हुए दूसरों के लिए एक चरवाहा स्वरूप अपने को प्रस्तुत करते हैं। अपनी रेवड़ की देखरेख और सेवा में फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा सवाल जवाब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक असक्षम व्यक्ति को पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य से चंगाई प्रदान की। लेकिन पेत्रुस अपने सवाल जवाब में यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देते हुए यह घोषित करते हैं कि जिस नाजरेत के यीशु ख्रिस्त को आपने क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला, वे ही सच्चे और जीवनदाता ईश्वर हैं। उन्हीं में हमारे जीवन की मुक्ति है। इस तरह हम पेत्रुस को भला गरेड़िया यीशु ख्रिस्त के बारे में सारी जनता को बतलाते हुए सुनते हैं, जिन्होंने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान अर्पित किया, क्योंकि भला गरेड़िया ने अपने जीवनदायी रक्त को क्रूस के काठ में सारी मानव जाति के लिए बहाया। वह रक्त विश्वासियों और उनकी ओर आने वाले हर एक जन के लिए चंगाई और जीवन का कारण बनता है। श्रोताओ, संत योहन के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए पहले पाठ को और भी अधिक गहराई में समझने को मदद करता है। हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम सच्चे अर्थ में वही हैं, क्योंकि एक पिता के रूप में ईश्वर ने हमें बेइंतहा प्रेम किया है। अपने उस प्रेम को वे हमारे लिए अपने पुत्र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में प्रकट करते हैं। और इतना ही नहीं, पिता ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए मानव जाति को अनंत पाप से बचाने हेतु अपने इकलौते बेटे का बलिदान करते हैं, जो हमारे लिए उनके प्रेम का एक सच्चा प्रमाण है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को एक भला गरेड़िया के रूप में अपने को प्रस्तुत करते सुना। यीशु ख्रिस्त का अपने को एक चरवाहे के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत करना पुनः हमारे लिए इस सच्चाई को व्यक्त करता है कि ईश्वर अपने प्रेम के कारण हम में से प्रत्येक जन के संग एक प्रेमपूर्ण संबंध में प्रवेश करने की चाह रखते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह पिता मुझे जानता है, उसी भांति वे अपनी हर भेड़ को जानते, पहचानते और प्रेम करते हैं। अतः यीशु हम में से हर एक को हमारे नाम, कार्य, व्यवहार और गुणों के अनुरूप जानते और पहचानते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे नहीं जानते हों। श्रोताओं, भला चरवाहा का यह रविवार बुलाहटीय रविवार की भांति भी जाना जाता है, क्योंकि आज के पाठों के आधार पर हम ईश्वर को अपने संग एक व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वे हम में से हर ख्रिस्तीय को यह निमंत्रण देते हैं कि हम पुत्र की ओर से आने वाली आवाज को सुने, जो हमें नाम लेकर पुकारते और बुलाते हैं। यीशु ख्रिस्त का यह निमंत्रण हमें उनके द्वारा होते हुए उस चारागाह में प्रवेश करने को मदद करता है, जहां हमें अनंत जीवन की शांति और खुशी मिलती है, जिसे पिता ईश्वर ने अपने बेटे में सारी मानव जाति के लिए तैयार किया है। यीशु उस अनंत जीवन के प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर हमें गुजरना है। वे हमारी खोज करते हैं, हमें बुलाते और हमारी राह देखते हैं, जिससे वे हमें पिता के निवास में ले चलें। हम जीवन में जिस भले व्यक्ति से मित्रता की चाह रखते हैं, वह मित्रता हमें यीशु ख्रिस्त में मिलती है, जो बिना थके हमारी बातों को सुनते हैं। वे हम में दोष नहीं लगाते और ना ही हमारे बेवफाई पर हमें अपने से अलग करते हैं। अतः आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें भले चरवाहे को भले रूप में जानने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम सदैव उनके संग मित्रता में बने रहें और उन्हें अपनी निष्ठा दिखा सकें।
है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आइए हम जागें, अपनी उदासीनता दूर करें और उन जेलों की सलाखें खोलें जिसमें हम कभी कभी खुद को बंद कर लेते हैं। आशा के तीर्थयात्री एवं शांति के कारीगर बनकर हम में से प्रत्येक कलीसिया और दुनिया में अपनी बुलाहट की खोज करें। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने अपने एक संदेश में कही है एवं विश्वासियों को कलीसिया एवं दुनिया के प्रति अपनी बुलाहट की खोज करने का प्रोत्साहन दिया है। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को उन तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जो ईश सेवक पियूस में की पुण्यतिथि की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, पोप पियूस में हम सभी के लिए एक अच्छे चरवाहे के एक महान उदाहरण है जो अपने झुंड के लिए अपना जीवन देता है। उल्लेखनीय संस्कृति और धर्मनिष्ठा, मठवासी, मठाधीश, धर्माध्यक्ष और पोप, इन सभी भूमिकाओं में उन्होंने महान त्याग की कीमत पर ईश्वर और कलीसिया के प्रति अपने समर्पण को हमेशा बरकरार रखा। अपनी गिरफ्तारी के नाटक के क्षण में उन लोगों को जिन्होंने उन्हें उनकी प्रेरितिक जिम्मेदारियों के संबंध में समझौते के बदले में जेल से भागने का रास्ता दिया था, उन्होंने उत्तर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर अपने चुनाव के दिन ईश्वर की मदद से जो करने का वादा किया था उससे पुष्ट किया। संत पापा पियूस के जीवन पर गौर करते हुए पोप फ्रांसिस ने तीन मूल्यों पर प्रकाश डाला, सहभागिता, साक्ष्य और करुणा। उन्होंने कहा, पोप पियूस भयंकर संघर्ष एवं विभाजन के समय में दृढ़ समर्थक एवं रक्षक रहे। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के आक्रमणों के कारण उत्पन्न उपद्रव ने ईश्वर के लोगों के भीतर और आसपास की दुनिया के साथ उनके संबंधों में दर्दनाक दरारें पैदा की। ऐसी परिस्थिति में पोप के लिए भी व्याकुलता बढ़ी, लेकिन एकता की रक्षा में अपनी शांत एवं दृढ़ मजबूती के साथ पोप उन लोगों के अहंकार को बदलने में सक्षम रहे जो उससे अलग और दूर करना एवं सार्वजनिक रूप से उनकी सारी गरिमा छीन लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने उससे कलीसिया के लिए समर्पण और प्रेम के संदेश को फिर से शुरू करने के अवसरों में बदल दिया। संत पापा ने कहा, उनका उदाहरण हमें हमारे समय में त्याग की कीमत पर सार्वभौमिक कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में, पलियों और परिवारों में एकता के निर्माता बनने, सहभागिता, मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने, शांति को बढ़ावा देने और परोपकार के द्वारा सच्चाई के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। संत पापा ने आगे कहा कि पोप पियूस सुसमाचार के उत्साही उद्घोषक थे जिन्होंने अपने वचन एवं जीवन से इसका प्रचार किया। तीसरा पहलू है करुणा। नेपोलियन के कार्यक्रमों के कारण उनके काम में आने वाली भारी बाधाओं के बावजूद पोप पियूस 12वें ने जरूरतमंदों के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। संत पापा ने तीर्थयात्रियों को पोप पियूस 12वें के सद्गुणों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया। पोप फ्रांसिस ने मोटू प्रोप्रियो जारी कर एक नए अपोस्तोलिक पत्र के साथ वैटिकन की न्यायिक प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानूनों को संशोधित किया। संशोधनों के बीच पोप ने संकेत दिया है कि सामान्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अब 75 वर्ष की आयु में होगी, जबकि कार्डिनल न्यायाधीशों के लिए यह 80 वर्ष की आयु में होगी।
संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में सामाजिक विज्ञान के लिए परमधर्म पीठीय समिति की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर समिति के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने अपने पूर्ववर्ती संत पापा पॉल षष्ठम को उद्धृत करते हुए कहा, कलीसिया और आधुनिक दुनिया के बीच संवाद में इतिहासकारों का विशिष्ट योगदान है। संत पापा ने उनके अंतर्राष्ट्रीय आयाम और बहु सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ साथ वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक सत्य की खोज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समिति का समृद्ध दृष्टिकोण चल रहे वैश्विक संघर्ष के सामने आवश्यक सांस्कृतिक कूटनीति में योगदान दे सकता है। संत पापा ने सदस्यों से बातचीत के क्षितिज खोलने का आह्वान किया, जहां वे सुसमाचार की आशा की रोशनी ला सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने इतिहासकारों और कलीसिया के बीच मौजूद निकटता पर प्रकाश डाला। यह निकटता सत्य की सामान्य खोज और सत्य की सेवा पर आधारित है। एक बार फिर संत पापा पॉल षष्ठम को उद्धृत करते हुए संत पापा ने कहा, कलीसिया हर उम्र की महिलाओं और पुरुषों के साथ इतिहास में चलती है और किसी भी संस्कृति से संबंधित नहीं है, लेकिन सुसमाचार की नम्र और साहसी गवाही के साथ हर संस्कृति के दिल को जीवंत बनाना चाहती है और साथ मिलकर मुलाकात की सभ्यता का निर्माण करना चाहती है। संत पापा ने आशा व्यक्त की कि इतिहास में उनका अध्ययन उन्हें कलीसिया की तरह मानवता में विशेषज्ञ और मानवता के सेवक बनाए। अपने संदेश के अंत में संत पापा ने उन्हें और उनके प्रियजनों को हार्दिक आशीर्वाद दिया और अपने लिए प्रार्थना का अनुरोध करते हुए उनसे विदा ली। उधर भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चुनाव में मतदान शुरू किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लाखों भारतीयों ने शुक्रवार को मतदान शुरू कर दिया। लगभग 970 मिलियन मतदाता दुनिया की आबादी का 10% से अधिक, संसद के निचले सदन लोकसभा के 543 सदस्यों को 5 साल के लिए चुनेंगे, जिसमें अगले 6 सप्ताहों में 7 चरणों में मतदान होगा। भारत के 28 राज्यों और 8 क्षेत्रों में से 21 में पहले दौर पर मतदान हो रहा है। चुनाव 1 जून तक चलेंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पिछले सप्ताहों में भारत के क्रिस्तीय धार्मिक नेताओं ने ख्रिस्तियों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा था कि देश एक निर्णायक क्षण पर है। हमारा वोट सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह विकास और अनुशासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम NUCF द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, जिसमें कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया NCCI और एवांजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया EFI शामिल हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।